யம் பிரம்மா வரும் ஏந்திர ருத்ர மருதா சுமர்பன் சதிவரேஷ்ட வை வேதை சாந்தகரணோபனிஷதை காயந்திரியம் சாமதா ஜானாவஸ்திதரிவதேன மனதா பஷ்யம் ஜியம் யோகினோ யஸ்யாந்தம் ந விதுருசுரா
ग्रंथों में गीता का स्थान प्रमुख है। वैसे अपने धर्म ग्रंथों के मूल ग्रंथ वेद हैं, परिषद हैं, उन्हीं के आधार पर सारा आध्यात्मिक साहित्य तैयार हुआ। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे करके जैसे लोगों के स्वभाव, विचार, संस्कृति उनकी बदलती गई और वेदों को समझना लोगों को कठिन होने लगा, उनका अध्ययन अध्यापन कठिन होने लगा, वैसे वैसे स्मृत ग्रंथों की रचना होती गई और स्मृत ग्रंथों में गीता प्रमुख स्थान रखती है। स्मृत ग्रंथ मैंने वेदों के आधार पर लिखे गए जो धर्म ग्रंथ हैं वो स्मृति ग्रंथ हैं। गीता भी एक स्मृति ग्रंथ है लेकिन उपनिषदों के समकक्ष है। स्मृत ग्रंथ बहुत से हैं लेकिन जो स्थान गीता को प्राप्त है वो स्थान अन्य किसी स्मृत ग्रंथ को प्राप्त नहीं है। ये गीता महाभारत में उसी का एक अंग है। इसको समझने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में महाभारत का जो इतिहास है वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान न होने पर कई बातों की ऐसी समस्या उत्पन्न होती है गीता में जो लोगों को समझ में नहीं आती। अगर पृष्ठभूमि मालूम हो तो फिर वो हो शंकाएं जो उपस्थित होती हैं व्यक्तियों की मन में वो फिर उपस्थित ना हो। इसलिए ये देखें कि लगभग आज से 5000 वर्ष पहले इतिहासकारों के मत से उस समय यहाँ कौरव और पांडव ये एक ही वंश के दो चचेरी भाई थे और एक ही कुरु वंश में पैदा हुए थे। लेकिन कुरु वंश से धृतराष्ट्र ने अपना संबंध जोड़े रखा और इनको पांडवों को पांडव पुत्र कह करके उनको थोड़ा अलग करने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि यह पांडु के पांच पुत्र जो धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव हुए यह पांडव कहलाए। पांडु के पुत्र होने के कारण से पांडव, यद्यपि पांडु बड़े थे और धृतराष्ट्र छोटे थे और पिता का राज्य जो है बड़े पुत्र को प्राप्त होता है, पांडु को प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उस समय व्यवस्था ये की गई कि चूंकि पांडु को पांडु रोग था इसलिए उनको पांडु कहते थे। पांडु को मैंने पीलिया रोग और वो इतना ज्यादा घातक था दूसरी रोग में फिर वो उनका शरीर समाप्त भी हो गया। इसलिए ये हुआ कि रोगी व्यक्ति को राजा होना ठीक नहीं है तो तब तक ये राज्य धृतराष्ट्र को दे दिया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे थे, वो भी राज्य को कैसे संभालते, तो उस राज्य को संभालने के लिए उनके पुत्र जो दुर्योधन था उसके हाथ में शासन आ गया। राजा रहे धृतराष्ट्र लेकिन सारा राज्य का कार्यभार दुर्योधन के हाथ में आ गया। धीरे धीरे दुर्योधन ही उसका स्वामी बन गया और धृतराष्ट्र का भी विरोध करने लगा, उनकी बात भी मानना उसने स्वीकार नहीं किया। निश्चय ये हुआ था उस समय कि जब ये पांडव लोग बड़े हो जाएंगे, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे और शासन व्यवस्था चलाने के योग्य हो जाएंगे तब ये राज्य इनको युधिष्ठिर को पुनः दे दिया जाएगा, वही राजा बनेगी। उतने काल तक के लिए ये राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में रहेगा। लेकिन जब पांडव बड़े हो गए और अब ये चर्चा चली कि फिर अब धर्मराज युधिष्ठिर को यह राज्य उनको मिल जाना चाहिए और धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये राज्य उनको समर्पित कर दें, उस समय सब मंत्रियों ने और दूसरे लोगों ने भी जितने भी धर्म के विचारक थे उन सब ने जोर दिया कि अब राज्य को दे देना चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने वो राज देना स्वीकार नहीं किया। इसी के साथ साथ एक कथा और भी चलती है जो महाभारत में बड़े विस्तार के साथ है कि दुर्योधन जानता था कि ये सब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि ये बड़े हो जाएंगे तब ये राज्य इनको देना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश ये करो कि इन पांचों को मार डालो, फिर तो राज्य मांगने वाला कोई रहेगा नहीं और धर्म का भी कोई बात कहने वाला रहेगा नहीं, इसलिए इन पांचों को मार डालने के लिए बार बार कोशिश होती रही। अनेक प्रकार से लाक्षाग्रह की कथा भी आप जानते, वो भी इसीलिए थी, कई बार पानी में समुद्र में और उसमें उनको डुबो देने की कोशिश की गई, पेड़ों पर चढ़े हुए कभी हुए तो पेड़ को हिला हलू करके पेड़ के ऊपर नीचे गिरा करके उनको मार देने की कोशिश हुई, माने मारने की जितनी भी उपाय हो सकते थे और जिन लोगों को लगाया जा सकता था वो दुर्योधन के हितैषी लोग या उसके सैनिक लोग जो कुछ थे वो इन पांडवों को मारने की कोशिश करते रहे। अब एक तो ये था कि पांडव जब राज्य के अधिकारी हो जाएं तो दुर्योधन को चाहिए था कि उनको राज्य दे दे, तो एक तो अधर्म की बात यही थी, वो देने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि वो राज्य उसके हाथ से छिन न जाए, इसलिए वो पांडवों को मारने के लिए बार बार कोशिश करता रहा, ये भी उसका अधर्म का कार्य था। ये समझना पड़ेगा दुर्योधन की तरफ अधर्म की क्या क्या बातें थीं, वो बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दुर्योधन ने इस प्रकार के अधर्म के द्वारा उस राज्य को हथियाई रखा और उनको पांडवों को नहीं दिया। अंत में हुआ ये कि जब ये बड़े हो गए और राज्य देने की नौबत आई कि अब देना ही देना पड़ेगा, तब इनको राज्य एक बार दिया भी गया, पांडवों को प्राप्त भी हुआ, तो भी दुर्योधन ने जो ये है कि फिर युक्ति चलाई कि किसी प्रकार से इनको दिया हुआ राज्य फिर ले लें। तो अब तरीका क्या अपनाया गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये पांडव लोग राज्य हार जाए, अगर हार करके दुर्योधन को मिल जाएगा तब तो ये हुआ कि चलो अब तो हमारा राज्य जीता हुआ है, इसलिए अब ये प्रस्ताव चला, कूटनीतिक चालें चली और उसके द्वारा जो वो हो एक जुआ खेलने की व्यवस्था की गई और उसमें दोनों तरफ के लोग दांव लगाने के लिए बैठे और शकुनी जो उसमें था दुर्योधन का मामा, वो बहुत होशियार था, चतुर था वो इस कला में, तो उसने उसमें बेईमानी के साथ दुर्योधन का पक्ष लेकर के पांडव को हरा ला गया, वो अपना राज्य हार गए और पत्नी भी हार गए और अपना जो है वो हो स्वयं अपने को भी हार गए। अपने हार जाने के माने ये है कि फिर ये हुआ कि दांव ये लगा कि जो व्यक्ति हार जाएगा उसे 12 वर्ष तक वन में वास करना पड़ेगा, एक वर्ष अज्ञात वास करना पड़ेगा। उसमें भी हार गए, हारते ही समय चले गए लेकिन दांव लगाते चले गए, अंततः यह स्थित हो गई। अब इस प्रकार से अब ये हुआ कि जो ये है निश्चय ये हुआ कि जब ये है वनवास से लौट करके आएंगे तब इनका राज इनको वापस दे दिया जाएगा, जब तक ये है वन में समय अपना काटेंगे तब तक राजा दुर्योधन इसके ऊपर राज्य करेगा। अब इसमें भी जो ये है जुए खेलने का दांव लगाने का जो कार्य था इसमें भी बेईमानी थी, अधर्म इसमें भी हुआ, लेकिन फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर को वो कार्य करना पड़ा। बात एक ही है, कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि देखो इन लोगों ने जुआ क्यों खोला और उसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खोला, क्योंकि जुआ तो पाप है। शास्त्र ये भी दिखाता रहता है कि देखो धर्मात्मा लोग भी यदि इस प्रकार के गलत जुआ खेलने जैसा कार्य करेंगे तो उनकी क्या गति होती है, बाद में कैसे बन जाना पड़ता है, कैसे तमाम युद्ध करने पड़ते हैं, उनको परिणाम दिखाने के लिए भी कभी कभी इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं। तो उससे अब ये नहीं कि चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला इसलिए हम भी खेलें, ऐसे नहीं है, चूंकि उन्होंने खेला उसका दुष्परिणाम हुआ इसलिए हमको उससे दूर रहना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए शास्त्र उसका वर्णन करते हैं। और दूसरी बात ये कि एक प्रकार से जस्टिफाई करना चाहें, डिपेंड करना चाहें, तो ये भी कह सकते हैं राजाओं के धर्म अलग हैं, ब्राह्मणों के धर्म अलग हैं, अन्य अन्य लोगों के धर्म अलग हैं, इनके अपने अपने स्वधर्म हैं। राजा का धर्म ये है कि अगर कोई दूसरा चैलेंज उसे करे तो उसे चैलेंज उसे स्वीकार करना पड़ता है, मना नहीं कर सकता। और इसमें जुआ खेलने का भी चैलेंज था, अगर ये मना कर देते तो भी अधर्म था। ये नहीं कह सकते थे कि जुआ जो है अधर्म है इसलिए हम खेलेंगे नहीं, वो तो एक प्रकार के पराजित करने के लिए, जीतने और पराजित जय पराजय की प्रसन्नता उसको लेकर के वो खेला गया था। इसलिए ये ऐसी स्थिति में थे धर्मराज युधिष्ठिर कि उसको मना भी नहीं कर सकते थे। परिणाम ये हुआ कि उसके बाद जुआ खेला गया, वन में भी गए और वन से लौट करके भी आए। ये सब कथा विस्तार से देखनी हो तो महाभारत में आप देख लें, ज्यादा यहाँ विस्तार बताने की जरूरत नहीं। पृष्ठभूमि के रूप में आप देखो कि जब वो वन से लौट करके आ गए तब ये था कि दुर्योधन के पास सूचनाएं गईं, कहा कि अब ये राज्य जो है वापस पांडवों को मिल जाना चाहिए, अब तो इसमें कहीं कोई जो वो हो बीच में बाधा नहीं है, धर्मानुसार पांडवों का राज्य है, अब इनको वो प्राप्त होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। कई बार इस प्रकार के प्रयास किए गए, अन्य लोगों ने भी, बहुत लोगों ने दुर्योधन को समझाया लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं। अंत में भगवान कृष्ण को ही दूत बना करके भेजा गया, पांडवों की तरफ से गए और दुर्योधन के पास जाकर के जो प्रस्ताव रखा कि देखो पांडवों का राज्य है, वो राज्य तुमको दे देना चाहिए, यही धर्म है। दुर्योधन ने उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने दूसरे प्रस्ताव रखे कि सारा राज्य न दे दो, आधा दे दो, आधा तुम बनाए रखो, कंप्रोमाइज कर लो आपस में। इस प्रकार से दुर्योधन ने उसको भी नहीं माना, कहा कि अच्छा इतना सही, पांच शहर दे दो, थोड़ा सा स्थान जितने तुम्हारा राज्य का है छोटा सा एक भाग दे दो, उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो कहा इतना भी नहीं कर सकते हो कि तुम पांच गांव दे दो उनको, पांच पांडव हैं, एक एक गांव में एक एक पांडव, एक एक गांव का राजा बनकर के रह जाए, शहर का राजा बनकर के रह जाए, एक बस्ती का उतना स्थान भर दे दो। कहा कि ना, प्रसिद्ध है लोग बात कहते हैं ना उस समय कि दुर्योधन ने कह दिया कि सुई के नोक के बराबर भी हम इनको भूम बिना युद्ध किए नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने समझाया दुर्योधन को कि देखो ये अधर्म है, तुम हठधर्मी कर रहे हो, अन्याय का पक्ष है, और सब लोगों से भी पूछ लो, तुम जितने हैं ये जितने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और जो तुम्हारे जो कुछ राष्ट्र इत्यादि हैं और जितने मंत्री इत्यादि हैं उन सबसे भी पूछ लो, देखो कि ये सब अधर्म की बात है जो तुम कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि अधर्म क्या है, हम जानते हैं कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म के पक्ष में जाने पर और उसको स्वीकार कर लेने में तो हमारा राज्य ही जाता, फिर हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, इसलिए हम धर्म को महत्ता नहीं देते, हम राज्य को महत्ता देते हैं। देखो ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, बुद्धि में खूब धारण करनी पड़ेगी, खूब अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। जब दो बातें आवे, एक धर्म हो और दूसरा राज्य हो, तो दोनों में से किसको चुनना चाहिए? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं दुर्योधन से? कहते हैं कि तुमको धर्म का पक्ष ग्रहण करना चाहिए, राज्य के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि धर्म में क्या धरा है, उसको धर्म का पक्ष लिए तो राज्य ही हमारा चला जाएगा, हम कैसे धर्म को स्वीकार करें? अब राज्य ही चला जाएगा कि माने उसे ये दिखाई दिया राज्य बड़ी चीज है, धर्म उसके कुछ सामने नहीं है। धर्म ग्रंथों का सबसे पहली शिक्षा यही है कि जीवन में धर्म प्रथम है और जितनी भी उपलब्धियां भौतिक उपलब्धियां हैं वो बाद में है। धर्म के द्वारा भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो वो व्यक्ति के लिए जीवन के लिए कल्याणकारी है, उपयोगी है, सुख देंगी, और यदि अधर्म के मार्ग पर व्यक्ति चलता है, अधर्मी जीवन अगर वो जीता है व्यक्ति, तो फिर उसकी कोई भी भौतिक उपलब्धि किसी मूल्य की नहीं है, उसकी गणना ही नहीं की जाती है किसी के उसकी उपलब्धियों में से। ये प्राचीन काल के ऋषियों के मुनियों के विचारकों का चिंतन था जो आज धीरे धीरे लोग बाग जन साधारण भुला गए हैं, लेकिन विद्वानों को ये भी मान्य है कि वास्तव में जो भौतिक जीवन की भी उपलब्धियां हैं वही उपलब्धियां मूल्यवान है और प्रशंसनीय है, जो धर्म से प्राप्त हुई हैं, अधर्म से प्राप्त हुई हैं, वो कोई उपलब्धि उपलब्धि है ही नहीं, माइनस में है वो। जैसे कि व्यक्ति जैसे जीरो है, जीरो से अगर नीचे आप चले गए माइनस और माइनस एक दो तीन पांच, ये क्या है, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति बढ़ती चली जा रही लेकिन माइनस में बढ़ती चली जा रही, लेकिन धर्म के द्वारा जो भौतिक संपत्ति बढ़ती जा रही वो प्लस में बढ़ रही है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक जितना धर्म और फिर उसके भौतिक उपलब्धि, तब जाकर के वो उपलब्धि व्यक्ति की जो वो किसी काम की है। देखते हैं कि जो जहां चार पुरुषार्थों की बात आती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें धर्म अर्थ और काम को अभ्युदय कहते हैं। अभ्युदय, अभ्युदय के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे प्रॉस्पेरिटी, माने वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं, वो धर्म अर्थ और काम इन तीनों को मिला करके वो है। लेकिन धर्म जहां है ही नहीं और प्रॉस्पेरिटी है, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो तो चोरों का खजाना है। चोर कोई प्रॉस्परस थोड़े होते हैं, बेईमान कोई प्रॉस्परस थोड़े होते हैं। ये बात जो है, ये धर्म की बात अगर समझ में नहीं आई तो आगे फिर वेदांत की बात, आत्मा परमात्मा की बात समझने का स्थान उन लोगों के लिए कहां है जिन लोगों की बुद्धि में ये चढ़ा हो, अरे धर्म अभी कुछ नहीं है, ये सब कुछ संपत्ति जो है, चाहे बेईमानी से आई हो चाहे चोरी से आई हो, वही जीवन का सब कुछ आधार मूल्य है, ऐसे लोगों के लिए धर्म ग्रंथ है ही नहीं। वो तो पहली सीढ़ी जो धर्म की है वही टूट गई, बस आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये दृढ़ता के साथ पकड़ के चले, पहली शिक्षा यही है। और फिर देखते हैं कि भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी तो भगवान कृष्ण को लौटना पड़ा। अब हम और विस्तार नहीं करते, महाभारत में बड़ा विस्तार से वर्णन है। भगवान कृष्ण गए, दुर्योधन ने बहुत कोशिश की कि इनको राजभवन में रखें और बहुत ठाट बाट में इनको रखें और इतना इनको जो है भौतिक उपलब्धियां इनको प्रदान कर दें, उपलब्ध कर दें कि उनको पा करके ये गदगद हो जाएं और फिर हमारे पक्ष में बोलने लगे। ये सब युक्तियां उसने की लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई इसको स्वीकार नहीं किया। न उनके उनके यहाँ पर राजभवनों में रहे, न वो एयर कंडीशनर में रहे, न उनके सेवक सेवकाओं के सेवक में रहे, वो जाकर के विदुर के यहाँ जहाँ के बिल्कुल ही वो दरिद्री का जीवन व्यतीत कर रहे थे उनके पास जाकर के वहां रहे और वहीं उन्होंने रूखा सूखा खाया। ये क्या बात कह भगवान ने, कौन सा ये किस कार्य के द्वारा उन्होंने क्या शिक्षा दी? अब स्वयं देख लो अपने आप ही कि दुर्योधन जैसे बेईमान लोगों का, चोरों का अन्न नहीं खाना चाहिए और उनके पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। एक दरिद्री के यहां रह लो, भूखो मर लो, वो अच्छा है, लेकिन किसी बेईमानी के यहां रह करके अपने जीवन की रक्षा करना ठीक नहीं। बस इसके बाद परिणाम ये हुआ कि जब उस युद्ध समझाने पर बाद में निश्चय हो गया दुर्योधन के सामने कि वो युद्ध किए बिना नहीं काम बनेगा, तो फिर युद्ध की तैयारियां होने लगी। कहा ठीक है, युद्ध ही होगा फिर। और फिर निश्चय हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी होने लगी। पांडव लोग भी जाकर के उस समय देश में बहुत से राज्य थे जो धर्म का पक्ष मानते थे और धर्मात्मा राजा थे, धर्म को महत्व देते थे, वे लोग तो पांडवों के पक्ष में आने को तैयार हो गए। लेकिन अधिकांश राजा लोग ऐसे थे जो दुर्योधन की तरह वो भी दुराचारी भ्रष्टाचारी थे, प्रजा का शोषण करने वाले थे, प्रजा का पालन करने वाले नहीं थे। वे अपने ही राज्य भोग और सुख भोग के लिए राजा बने हुए थे, प्रजा की सेवा करने के लिए राजा नहीं थे। ऐसे दुर्योधन के ही समान अनेक राजा लोग थे देश भर में। उन लोगों को दुर्योधन ने उसी प्रकार के जितने बेईमान राजा थे, दुराचारी भ्रष्टाचारी राजा थे, उन सबका समर्थन दुर्योधन ने प्राप्त कर लिया और उन सबको इकट्ठा किया। उन लोगों ने दुर्योधन का इस कारण से भी समर्थन किया, इस कारण से पक्ष में आए, उन्होंने अनुमान लगाया तो देखा कि एक तरफ पांडवों की सेना होगी और दूसरे तरफ दुर्योधन की सेना होगी, कौरवों की सेना। इस सेना में अधिक तो होंगे दुर्योधन की तरफ ही, पांडवों की तरफ तो बहुत थोड़े लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे। फिर उन लोगों ने सोचा कि इसमें जो ये है राजा तो इस समय दुर्योधन है, इसलिए सारी शक्ति तो दुर्योधन के हाथ में, पांडवों के हाथ में राज्य तो है नहीं, इसलिए अगर युद्ध भी करेंगे तो इनमें कितनी शक्ति होगी, कहाँ जीते जाते हैं, इसलिए राजा का पक्ष करना चाहिए। एक राजा ने दूसरे राजा का समर्थन करने की वजह से और पांडवों को ये समझ दुर्बल समझ करके उनका विरोध करने को तैयार हो गए। ये भी संसार में इस प्रकार की नीति है कि व्यक्ति जहाँ देखता है कि लोग धन से भौतिकता से समृद्ध हैं, वो चाहे बेईमानी के पक्ष हो तो भी उनका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जानते इनसे तो आगे पीछे कुछ लाभ हो सकता है, इसलिए इनका समर्थन करो। एक कोई धर्म के पक्ष में रहने वाला व्यक्ति है और उसके पास कुछ है ही नहीं, उस धर्म के नाम पर लेकर के उसका समर्थन करने से भी क्या होगा, मिला क्या जाता है उससे। ऐसे तर्क काम करते हैं लोगों की बुद्धियों में, संसार में सदा ही पहले भी होते रहे, अब भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो संसार तो ऐसा ही है, जैसे पहले था वैसा अब भी है, वो तो स्थितियां अब भी जीवन में देखने में आती है सर्वत्र। इसलिए बहुत से राजा लोग जो थे दुर्योधन की तरफ आ गए, और आप जानते हो कुछ अक्षौणी में सेनाएं गिनी गई, कितनी कितनी विशाल सेनाएं होती थी, और उनको फिर एक अक्षौणी 11 अक्षौणी सेना जो है वो दुर्योधन की तरफ इकट्ठी हो गई। पांडवों ने बहुत शक्ति लगाई तो उनकी तरफ केवल 7 अक्षौणी सेना रह गई, फिर भी उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया। जो लोग भगवान कृष्ण के महत्ता को थोड़ा बहुत समझते थे वे लोग भी पांडवों की तरफ आ गए। वो जान उनको जब मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ हैं, तब कुछ लोग जो हैं उनके कारण से प्रभावित होकर के आ गए। कुछ लोग पांडवों के ही धर्म की रक्षा के लिए कि इनका पक्ष करेंगे तो धर्म का पक्ष होगा, अब जो कुछ है मरना पड़े जीना पड़े हारे जीते कुछ भी हो लेकिन धर्म का पक्ष वही लेना चाहिए, इसलिए ऐसे लोग बहुत से लोग पांडवों के पक्ष में आ गए और 7 अक्षौणी सेना फिर भी इनकी हो गई। एक कथा इस संबंध में ये भी है कि भगवान कृष्ण ने निष्पक्षता दिखाई कि हम निष्पक्ष हैं, अगर युद्ध होने जा रहा है तो हमें न कौरवों से और न पांडवों से, हम किसी पक्ष में नहीं, हमें दोनों ही समान हैं, ये भी भगवान ने दिखाया। और इस समानता के कारण से जब ये दोनों ही लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, अर्जुन भी पहुंचा दुर्योधन भी पहुंचा उनके राज्य में गुजरात में जहाँ वहाँ उनका राज्य था उस समय भगवान कृष्ण का, तब वहाँ इस प्रकार की युक्ति भगवान कृष्ण ने अपनाई जिसके के कारण से उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि हम अपने दो हिस्से किए देते हैं, एक एक पक्ष में हमारी सारी सेना नारायणी सेना रहेगी और दूसरे पक्ष में हम रहेंगे। और ये हुआ कि दोनों में से एक एक को एक आया कि इनको भगवान कृष्ण को ही अपने पक्ष में लेना चाहिए, और उनसे कहा कि हम तो आपको ही चाहते हैं। तो दुर्योधन उछल पड़ा, बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा कि ये तो अगर हमसे भी पहले कहा जाता कि तुम मांग लो तो हम तो यही मांगते कि सेना हमें अपनी इतनी विशाल सेना जो है वो हमको दे दो, एक व्यक्ति को लेकर के हम क्या करते जिसके जो हाथ में एक तलवार उठाने को भी तैयार नहीं, धनुष बाण में हाथ में लेने को तैयार नहीं, ऐसे व्यक्ति को लेकर के हम क्या करेंगे, जहाँ युद्ध का काम है वहां तो सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ेंगे। अब देखो बुद्धिमानी किस बात में है, देखो बुद्धियां कैसे काम करती, जस्टिफाई तो यही दुर्योधन की बुद्धि यही जस्टिफाई करेगी कि जब युद्ध का काम हो रहा है तो वहां पर अगर 25-50 हजार 1 लाख 2 लाख व्यक्ति जो है वो सैनिक मिल रहे हैं, धनुष बाण धारण किए तलवार लिए हुए घोड़ों चढ़े रथों बैठे हुए हाथी बैठे हुए इस प्रकार की सेना मिल रही है तो वो काम की सेना है कि एक व्यक्ति काम का है जो अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाएगा। दोनों को मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन में ये दिखाई दिया कि सेना ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा महत्वपूर्ण है मूल्यवान है, एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि वही काम कर रही थी, इसके पास अर्जुन की बुद्धि वही काम कर रही थी, और वो ये सोच रहा था कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ा राज्य स्थापित कर दिया, इतनी बड़ी सेना स्थापित कर दी और इतना शक्तिशाली बन गया, वो व्यक्ति बड़ा है कि उसकी सेना बड़ी है, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो हो कारखाने पर कारखाने खड़ा कर दे और तमाम बड़ा भारी उत्पादन होने लगे तो अब बताओ वो व्यक्ति बड़ा है कि वो कारखाने बड़े। जब इस तरह से अर्जुन ने जब ये सोचा तो उसने सोचा इस व्यक्ति को लेना चाहिए, ये ऐसी इसकी बुद्धि है कि इसकी बुद्धि का अगर हम प्रयोग कर सके तो फिर ये जो है ये ऐसी सेना क्या है कि तो तमाम सेना इकट्ठी हो जाएंगी, देखो इससे बराबर शास्त्र जो है वो हो जीवन के जो विभिन्न स्तर हैं और उनके मूल्यांकन हैं वो शास्त्र में आपको कहानियों में भी मिलते रहते हैं। कोई गीता ही शास्त्र में नहीं, गीता में आके तो मिलेगा आकर के, लेकिन अन्यान्य भी आप भी देखेंगे सब जगह इस प्रकार की बात आपको मिलती रहती है, स्पष्टीकरण मिलता रहता है इसका। इसके माने ये है कि भौतिक समर्थ से श्रेष्ठ व्यक्ति का शरीर, उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति की बुद्धि है। एक गांव की एक कहावत है कि अकेल बड़ी की भैंस, भैंस बड़ी होती है दूध देती, इतनी बड़ी होती है अकेल में कितनी जरा जगह, ऐसे नहीं है। जिनको समझ वो जानते हैं कि अकल जो है वो हो बुद्धि बड़ी है, भैंस कुछ नहीं उसके सामने, लेकिन मूर्खों को भैंस बड़ी दिखाई देती है, अकल बड़ी नहीं दिखाई देती। इसलिए मूल्यांकन करो जीवन के उच्च मूल्य क्या है। समृद्धि श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है, समृद्धि श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है, भौतिक समृद्धि श्रेष्ठ है कि आध्यात्मिक उपलब्धियां श्रेष्ठ है। बस इतनी ही बात न समझ में आने के कारण से व्यक्ति अध्यात्म शास्त्र से विरत रहते हैं, भागते रहते हैं। उनको यही दिखाई देता भौतिक समृद्धि प्राप्त करो इनके इन प्रकार है और उसी में सुख है, वही सब कुछ है, बस उसी में बुद्धि उनकी छपकी रहती लगी रहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसकी बुद्धि है, उसकी आत्मा है, परमात्मा स्वरूप उसका है, उसका जो, क्योंकि वो जानता है कि इसमें मूल्य ही क्या है, ये तो बेकार है, इसलिए उसके लिए उपलब्ध करने के लिए, संग्रह करने के लिए अपनी शक्ति समय नहीं लगाता। दूसरे जो और महान कार्य है उन कार्यों को जीवन में अपने करता है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों में से जिन लोगों को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, महानता श्रेष्ठता इन लोगों को प्राप्त हुई है, यदि ऐसे लोग कदाचित कभी कारखाने लगाने और धन संपत्ति इकट्ठी करने, प्रोडक्शन बढ़ाने इस प्रकार के कार्य में लग गए होते तो उनके समान कोई ऐसा महान व्यक्ति न हुआ होता, बहुत बड़े कार्य उन्होंने कर डाले होते इस प्रकार के, लेकिन जानते ही तुच्छ बातें हैं। स्वामी शिवानंद जी ने एक जगह अपनी पुस्तक में लिखा है कि आज से 70-80 वर्ष पहले कभी हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति हुआ और उसने अमेरिका में कारखाना लगाया, मोटर कारखाना, और वो बिल्कुल दरिद्री, बचपन में बिल्कुल दरिद्री था, माँ बाप भी बचपन में मर गए थे। एक लोहार के यहाँ हथौड़ा चलाना और धोखनी धोखने वाला काम, वहाँ नौकरी उसने की थी। उसने वो हो अपनी लगन में जुटा रहा, लगन में लगा रहा, और फिर उसने तमाम मशीनें चलाना, कारखाना चलाना, ये सब उसने सीखा, और जैसे जैसे कार्य करता गया तैसे तैसे आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, और अंत में फिर वो हो ये सब इतना कारीगर हो गया, इतना कि सब हो जाए, सब प्रकार के बना ले, चीजें बना ले, और पूरी मोटर के मोटर बनाने का कार्य उसे आ गया, और फिर उसने उसका कारखाना भी शुरू किया, और कारखाना भी इतना बड़ा कारखाना लगा दिया कि प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय के जो थे वो गए कारखाना देखने के लिए। तो उसने जितनी देर में एक कारखाना में घुसा वो दिखाया कि देखो यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, ये लोहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, यहाँ ढलाई का कार्य हो रहा है, ये सब पुर्जे बन रहे, ये सब दिखाता हुआ आगे तक जब तक गया, और देखो ये सब पुर्जे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, फिटिंग हो रही है, ये अब इनके जो है इनकी खराद की मशीनें ये लगी हुई, इनकी खराद हो रही है, यहाँ पर इनके फिटिंग हो रही है, और जब तक बाहर बाहर निकले कारखाने से तब तक उनको एक कार उसने भेंट कर दी, कहा कि जो आप वहाँ पड़ा हुआ लोहे का ढेर आप देख रहे थे रॉ लोहा, वो इस समय आपके हैं, इतनी ही देर में कार बना हुआ तैयार है, उसी को आपको ही हम तैयार कर रहे हैं, इतना बड़ा कारखाना उसने लगा दिया। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने जीवन में इतनी उन्नति कर सका और इतनी लगन से लगा रहा, इतना परिश्रम कर सकता था, लेकिन क्या बताएं, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुआ, एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ धन ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु थी, उसी के लिए उसने अपना जीवन दिया। कदाचित उसको अध्यात्म विद्या का पता चल जाता और उसने सीखी होती तो निश्चय ही ऊपर में विद्या का महान ज्ञानी व्यक्ति बनता। स्वामी शिवानंद जी का उसके संबंध में कहना। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति हो तो क्या कहेगा, अब देखो हेनरी फोर्ड ने इतना बड़ा कारखाना लगा, ये बड़ा कार्य किया और ब्रह्म ज्ञानी हो गया होता तो कौन बड़ी बात थी, उसे क्या होता। कोई कोई व्यक्ति इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहते, अगर कोई मुक्त भी हो गया तो क्या फायदा होगा, परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया तो क्या फायदा होगा, माने समझ ही नहीं आता उसका मूल्य, जो जीवन के उच्च मूल्य हैं उनकी महत्ता ही लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए शास्त्र बार बार समझाते रहते हैं कि देखो भौतिक समृद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक समृद्धि हजारों गुनी श्रेष्ठ है, लाखों गुनी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी में जीवन के उच्च आनंद उसी में है। भौतिक समृद्धि भले ही धर्म के अनुसार प्राप्त हुई हो तो भौतिक सुख से प्राप्त करा दे, कीर्ति प्राप्त करा दे, स्वर्ग भी प्राप्त करा दे, लेकिन ये सब नाशवान है। स्थायी वस्तु कोई इससे धर्म से प्राप्त होने वाली नहीं है। कर्म के द्वारा, भौतिक समृद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहे, नित्य आनंद प्राप्त करना चाहे अथवा समस्त दुखों से छुटकारा चाहे तो इसके द्वारा नहीं हो सकता। ये जिसकी जब विचार करते करते धीरे धीरे ये बातें समझ में आती हैं तब ज्ञात होता है कि व्यक्ति का जीवन जो है वो हो भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन क्यों श्रेष्ठ है। पहली बात तो ये कि अधर्म से धर्म श्रेष्ठ है, इस कथा के पीछे जो है ये है, ध्यान रखें। अधर्म का जीवन जी करके चाहे जितनी समृद्धि कोई व्यक्ति प्राप्त करे तो उसको अपने मन में ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास वो समृद्धि है या अपने पास भी उस प्रकार की समृद्धि है तो वो माइनस में है। अगर धर्म के द्वारा अगर वही समृद्धि प्राप्त करता है तो उसको प्लस मान सकता है कि समृद्धि है, लेकिन फिर भी भौतिक समृद्धि है। भौतिक समृद्धि के माने अपने बाहर से जो हमको भौतिक सुविधाएं दे सकती वही समृद्धि है, उससे कोई अपना विकास तो हो नहीं गया है। तो अपने आंतरिक विकास का जो है वो उस भौतिक समृद्धि से भी ज्यादा अपना आंतरिक विकास वो श्रेष्ठ है। इसलिए जब चार पुरुषार्थों में एक तो अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस, निश्रेयस के माने मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष निश्रेयस, निश्रेयस के माने मोक्ष के को निश्रेयस क्यों बोले, कि मोक्ष जो है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, परम प्राप्तव्य हो, क्योंकि उस अवस्था में पहुंच करके जो व्यक्ति के साथ में अनपेक्षित लगा हुआ है दुख क्लेश भय चिंता पीड़ा इत्यादि उन सब सबसे छुटकारा वही होता है। इसलिए वो हो उनसे सबसे अशुभ से छुटकारा ही मुक्ति है। और वही निश्रेयस है, निश्रेयस के माने उससे बड़ा कोई श्रेय नहीं, उससे बड़ी और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती, न इस लोक में न परलोक में, स्वर्ग आदि से भी ऊंची स्थिति है। इसलिए ये निश्रेयस किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता क्या है, इसको भली भांति समझ करके तब इस अध्यात्म विद्या का अध्ययन करें। और जितनी जितनी बात समझ में आवे उतनी की बार 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 विचार करके उसको दृढ़ करें। अगर शास्त्रीय कहते हैं कि अधर्म का अभ्युदय अभ्युदय है ही नहीं, धर्म से प्राप्त अभ्युदय है, तो इतना जानने के बाद में बैठ करके विचार करें, एक दो दिन दस दिन पंद्रह दिन सब लोगों से विचार करें और खूब अच्छी तरह अपने मन में ये दृढ़ करें कि धर्म के द्वारा प्राप्त अभ्युदय है वही कल्याणकारी है, अधर्म के द्वारा प्राप्त जो अभ्युदय है वो अभ्युदय है ही नहीं, उसकी संज्ञा अभ्युदय नहीं, वाचस्पति को जो है वो पहले अभ्यास करके समझ कर रखना चाहिए। फिर अगर आगे और बढ़ता है व्यक्ति तो ये भी देखे कि धर्म के द्वारा जो अभ्युदय प्राप्त हुआ है वो भी सब नाशवान है, वो सुख ही नहीं देता, दुखदायी भी है, उसके जो दोष है अभ्युदय के भी जो दोष है उन दोषों को भी देखना चाहिए, और वो दोष फिर निश्रेयस में नहीं है। इसलिए निश्रेयस को निर्दोष समझ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है वहां पर गीता के पृष्ठभूमि के रूप में जब देखते हैं दोनों सेनाएं इस प्रकार से खड़ी हुई और फिर युद्ध की जब तैयारी होने लगी और युद्ध प्रारंभ होने ही जा ही रहा था, उसी समय अर्जुन ने, पहले अध्याय में देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि युद्ध में कौन कौन खड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने रथ ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया, अर्जुन ने सबको देखा भी, और उसके बाद फिर अर्जुन को मोह भी हुआ, भगवान कृष्ण ने उस मोह के निवारण के लिए गीता भी अर्जुन को सुनाया, लेकिन उस दिन फिर युद्ध शुरू भी हो गया और युद्ध चला भी और कई दिन युद्ध चलता भी रहा। आखिरकार एक दिन भीष्म पितामह जो है वो हो घायल कर दिए गए और वो हो जमीन पर जा पड़े, सरसैया पर बाणों की सैया के ऊपर उनको लिटा दिया गया, वो हो भीष्म पर्व कहलाता है, भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व में ही इस गीता का वर्णन है। जब युद्ध शुरू हुआ वहां पर गीता का वर्णन नहीं है, जब युद्ध हो गया और भीष्म भी एक प्रकार से मारे गए तब वहां गीता का वर्णन हुआ। क्यों? क्योंकि जब इतना जब हो चुका तब धृतराष्ट्र को कई दिन के बाद संजय से उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि युद्ध में क्या हुआ, इतने दिन से जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था कोई सूचना नहीं मिली। तो संजय ने बताया कि भाई दोनों तरफ की सेनाएं पहले दिन इकट्ठी हुई थी, तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति आई कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश दिया, नहीं तो अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो जो उस तो संजय का संवाद हुआ उस संवाद के रूप में गीता है, वहां इसका वर्णन है। सीधे सीधे उस समय का वर्णन नहीं है जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हो, उसी समय का वर्णन हो बाद का है। इसके मैंने ये एक शंका लोगों को और होती उसका भी समाधान इसमें मिल जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी बताया वो इतना विस्तार नहीं था जितना कि गीता में है, और भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए उतना समय भी नहीं लगा जितना कि गीता के अध्ययन करने में लोगों को लगता है। उसके बाद जब कई दिन के बाद जब संजय ने धृतराष्ट्र को जब ये सब बात सुनाई तब वो गीता का थोड़ा विस्तार हो गया, क्योंकि अर्जुन जो है वो धृतराष्ट्र की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ पुरुष था। श्रेष्ठ पुरुषों को अध्यात्म विद्या संक्षेप में समझ में आ जाती है, लेकिन जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं उनको ये अध्यात्म विद्या देर में समझ में आती है। धृतराष्ट्र को ये बात समझाने के लिए संजय को थोड़ा विस्तार करना पड़ा, तो उसमें जो कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था संजय ने थोड़ा विस्तार करके धृतराष्ट्र को समझाया, और फिर उसके बाद ये सब वो तो समझा तो जवानी समझाया, कोई लिखा थोड़े उस समय, नए श्लोक बनाए। लेकिन फिर व्यास जी ने महाभारत की ग्रंथ की रचना की तो उसमें जब प्रसंग आया ये भगवान कृष्ण के उपदेश का, तो उस समय व्यास जी ने बड़ी एकाग्रता के साथ में भगवान कृष्ण के साथ तादात में रखते हुए भगवत बुद्धि प्राप्त करके तदभाव भावित होकर के भगवान के उपदेशों को व्यास जी ने लिखा और उसको श्लोकबद्ध किया। महाभारत सब श्लोकों में, गीता को भी उन्होंने श्लोकबद्ध किया। श्लोकबद्ध करने के कारण से कुछ उसमें विशेषता और आ गई, एक तो वो गेय हो गया, गीता कहलाने लगी, गेय हो गया, गाई जा सकती, श्लोक हैं उस प्रकार से श्लोक के रूप में बोले जा सकते हैं। दूसरे फिर व्यास जी को यह भी बताना पड़ा कि हिसास ने ये कहा, फिर संजय ने ये कहा, और दोनों तरफ की सेनाएं इस प्रकार से इकट्ठी हुई हैं, उन सेनाओं में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फिर अंत में जब 18वां अध्याय समाप्त होने लगा तब संजय फिर बताने लगे इस प्रकार से अर्जुन का जो मोह दूर हो गया, और फिर प्रशंसा करने लगे संजय, अर्जुन की प्रशंसा करने लगे, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे 18वें अध्याय में 8-10 श्लोक इसी बात के, गीता की प्रशंसा करने लगे। तब ये सब आ गई तो गीता का ग्रंथ जब वो इन सब में संक्षेपक उसमें बढ़ गए, इसलिए जब वो उसका थोड़ा विस्तार हो गया। इसलिए जो लोग दूर से गीता को देखते हैं और पृष्ठभूमि उनको पता नहीं, उनको ये शंका होती है कि क्या बात है कि इतनी बड़ी गीता 1800-1700 श्लोक, इनको सुनाने में अगर कोई व्यक्ति रटे रटाए भी हो और किसी को सुनाना चाहे तो भी 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्या इतनी देर तक सेनाएं दोनों तरफ भी खड़ी रहीं और फिर युद्ध नहीं हुआ। लेकिन नियम भी उस समय का इस प्रकार का था कि जब तक कि दोनों तरफ के लोग युद्ध करने को तैयार ना हो तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं होता था। इसलिए अगर मान लो घंटे भर तक दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी रहे और युद्ध प्रारंभ न हो तो दूसरी तरफ से युद्ध प्रारंभ नहीं होता। अगर एक तरफ से युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा भी कर दी जाए और दूसरे तरफ के लोग अपने अस्त्र शस्त्र न संभालें और युद्ध न करें तो भी युद्ध नहीं होगा। पहले अध्याय में देखते हैं कि उस तरफ जो वो हो दुर्योधन के पक्ष में जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने शंख बजा भी दिया, उन्होंने जो भीष्म पितामह थे उन्होंने शंख बजा भी दिया कि युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन युद्ध शुरू होने की घोषणा कर भी दी, हो भी गई युद्ध की घोषणा, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ। क्यों? कि अभी देख रहे हैं कि अर्जुन तो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हुआ, उसी बीच में इन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया कि वो अपने रथ से उतरे और जितनी दूर तक दूसरी सेना जितनी दूर पर खड़ी हुई थी पैदल 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 जा करके वहां द्रोणाचार्य के पास भीष्म पितामह के जहां रथ था वहां तक हो गए पैदल। अब जो व्यक्ति पैदल चला आ रहा है, निरस्त्र चला आ रहा है, हैं, तो उस समय ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ पे कहेगी अच्छा शत्रु आ गया हमारी तरफ, मारो इसको यहीं काट फेंक दो, ऐसे नहीं हुआ। उस समय किसी ने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, सब खड़े देखते रहे क्या बात है, क्यों आ रहे हैं, हो सकता है समर्पण करने आ रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमने हार मान ली, चलो तुम्हारी तरफ बहुत बड़ी सेना है, ऐसा ही हो, ऐसे विचार करते हैं लोग, और विचार उसको उनको कहीं मारा नहीं उनको, और न युद्ध के लिए उनको ललकारा, और धर्मराज से उनके पास जाकर उनको प्रणाम किया, तो उन लोगों ने आशीर्वाद भी दिया उनको, कहा कि राजन तुम्हारी विजय हो। इन्होंने ये कहा कि भगवान जब आप दूसरे पक्ष में खड़े हो सामने, तो हमारी विजय कैसे होगी। तब ये भी कहा कि देखो विजय जो होती है वो तो होती है, जो धर्म का पक्ष होता है उसी की विजय होती है, अधर्म के पक्ष की विजय नहीं होती। अब वहां पर और व्यास जी ने वर्णन भी कर दिया कि आखिरकार ये भी बात आई कि फिर ये द्रोणाचार्य जैसे भीष्म पितामह जैसे लोग जो धर्मात्मा लोग हैं, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म का समर्थन करने वाले, ये अधर्म की तरफ क्यों, तो इस प्रकार की भी शंकाएं आती हैं। ऐसी अनेक शंकाएं, शास्त्रों की रचना ही इस प्रकार की गई है जैसे लोगों को शंका हो। क्यों शंका हो, इसलिए शंका हो कि जब शंका होगी तब उसका समाधान होगा और तब रहस्य व्यक्ति को समझ में आएगा। अगर ये शंका ना हो तो ये कैसे पता लगे कि कभी कभी व्यक्ति जो है धर्मात्मा व्यक्ति भी अधर्म का पक्ष लेते हैं। क्यों लेते हैं, उनकी भी एक दुर्बलता होती है, उनका धर्म अपना धर्म था। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये समझ रहे थे कि हमने दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए अब जब युद्ध की बात आई है तो हमें इन्हीं की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा, और उस समय की प्रथा भी यही थी, यही धर्म माना जाता था कि भाई जो जिसका अन्न खाए उसकी तरफ से बोले, उसकी तरफ से लड़े, अन्य व्यक्ति को पराधीन कर देता है, जिसका अन्न खाता है व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है, वो जिस प्रकार से नाचना चाहे उस प्रकार से नाचना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा चूंकि हमने इनका अन्न खाया है इसलिए हमें इनकी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। ये बात वहां नहीं आई है, बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया शांति पर्व में, जब भगवान कृष्ण अर्जुन आदि इनको सब पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह सर तैयार पड़े से प्राण नहीं छूटे थे उनके पास गए, तब उनसे पूछा जाकर के धर्म के संबंध में, भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म का जितना अच्छा ज्ञान भीष्म पितामह का है उतना हम भी तुमको नहीं बता सकते, चलो उनसे पूछो चल करके। तो जाकर के धर्म की बातें बहुत पूछी और उस समय सारे प्रश्न आए। उस समय उनसे कहा कि धर्म क्या है, सब धर्म उन्होंने बताया भीष्म पितामह ने, और उसका सबका वर्णन करने के बाद अब शंकाएं प्रारंभ हुई। द्रौपदी पूछने लगी उनसे कि भगवान ये भी तो बताइए, आज आप जितनी धर्म की बातें कर रही हैं, इतनी धर्म का आपने काम कहाँ किए, जब ये लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तब आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी, तब आपका धर्म कहाँ चला गया था, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब आप जाकर के उनके पांडवों की कौरवों की तरफ से आपने युद्ध क्यों किया, तब आपका धर्म कहाँ चला गया था। तो उसका जो उत्तर उनके पास था वो कहने लगे कि तब के हम में और आज के हम में बहुत अंतर है। उस समय हमारे शरीर में जो रक्त था वो उन्हीं का था, उन्हीं के अन्न के खाए का वो बना हुआ था, उसके कारण से हमको उसी प्रकार का बोलना पड़ रहा था, वही करना पड़ रहा था। लेकिन आज जिस स्थान में हम पड़े हैं, आप देखो हमारे शरीर में कहीं रक्त की एक बूंद भी है, वो सब बह गई, जहां वो सब रक्त बह गया तो अब हमारी बुद्धि ठीक आ गई, धर्म की बात अब हम बिल्कुल शुद्ध रूप से धर्म की बात कह सकते हैं। अब इन्हीं से सब बातों से, अब आजकल तो समाज में ये सब कथाएं और ये सब प्रसंग धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी बातें बहुत सी समाज की ऐसी हैं जो बच्चों के बीच में, युवकों के बीच में आ गई हैं और उससे उनकी बुद्धियां आक्रांत हैं, तो इन सब पे विचार करने की बात नहीं। लेकिन हम बचपन में देखा करते थे कि जहाँ कहीं चर्चा होती थी लोग बाग इन्हीं कहानियों को सुनाया करते थे, महाभारत की कहानी सुना दी, रामायण की कहानी सुना दी, उनके तमाम स्थल सुना दिए, बता दिए देखो अमुक अमुक स्थान में ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, ये धर्म है, ये अधर्म है, इसकी सबकी चर्चा होती थी, इसी परिप्रेक्ष्य में जीवन जिया जाता था। और इसी की सब बातें चर्चाएं करते थे और फिर जीवन उसी प्रकार का चलता था। लेकिन वो सब के सब भुला देने के कारण से अब समाज में यही नहीं पता है कि इस भ्रष्टाचारी जीवन के से कोई श्रेष्ठ जीवन में कुछ जीवन हो सकता है, इसका कोई रास्ता ही नहीं सोचता, आंखें नहीं खुलते, धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर के बैठे। धृतराष्ट्र एक बार इस बात का प्रतीक भी है, धृतराष्ट्र अंधा, अंधा प्रतीकात्मक भी है कथा। धृतराष्ट्र अंधे कि माने अज्ञानी, उन्हें कोई ज्ञान नहीं, न धर्म का ज्ञान न परमार्थ का ज्ञान, ऐसे धृतराष्ट्र है। उन्हीं का पुत्र जो है वो हो अज्ञान का पुत्र अधर्म है जो दुर्योधन है। जब व्यक्ति अज्ञानी होगा, बुद्धि काम नहीं करेगा, तो फिर उसके उसके आचरण व्यवहार जो है उसके मानव पुत्र हैं वो जो है अधर्म हो गए, और पांडव जो है वो हो धर्म के पक्ष में, भगवान कृष्ण परमात्मा है ही है। अर्जुन जो है वो हो धर्मराज युधिष्ठिर उन्हीं का भाई, और ये पांचों पांडव धर्म के पक्ष में है, इसलिए ये धर्म के प्रतीक हैं। और ये सबके साथ अपना शरीर जो है वो एक रथ के समान है, इंद्रियां गुणों के समान है, और इसी में जो है भगवान कृष्ण हमारे आत्मा है। अर्जुन जो है इसका हमारा जो है वो हो जीव है, और जो धर्म के अनुसार चलने वाला है, जिसके साथ में ये सब जितने भी सात्विक गुण हैं, धर्म के साथ में धर्म है, न्याय है, सदाचार है, इस प्रकार के जितने कर्तव्य का पालन है, ये सब अर्जुन के साथ में है। और दुर्योधन जो है विपक्षी है, जिसको काम से ग्रसित है, क्रोध से ग्रसित है, नाना प्रकार के और राग द्वेष आदि विकारों से ग्रसित है, अहंकार से ग्रसित है, मूढ़ता से ग्रसित है, इस प्रकार के अधर्म का पक्ष दुर्योधन का है। और अपने अंदर जो एक प्रकार से संग्राम चलता रहता है, वो महाभारत का युद्ध हर व्यक्ति के अंदर चल रहा है। आप इसको ये मत समझे कि प्राचीन काल का इतिहास मात्र इतिहास सुना दिया तो कह दे आपने एक कथा पुरानी सुना दी और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म है और अपने अंदर की कथा है, अपने अंदर ही देखोगे ये सबके सब इस प्रकार से युद्ध चल रहा है। और जब जीव जो है वो भगवान कृष्ण की जैसे शरण में गया, इसी प्रकार से भगवान की परमात्मा की शरण में जीव रहता है, वो धर्म के पक्ष में रहता है और उसकी जीवन में विजय होती है। और जो विरोधी दल है, दुर्योधन का दल माने दुराचारियों का दल और जो दुर्गुणों का दल है, वो दल उसकी तरफ परमात्मा जो है उसके परमात्मा उसके पक्ष में जाना भी चाहे तो परमात्मा का पक्ष नहीं स्वीकार करता। देखो जितने भी दुर्बलताएं अपने हैं, मान लो कि कोई बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचारी परमात्मा की शरण ले तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि परमात्मा उसके भ्रष्टाचार को समृद्ध बनावे, परमात्मा उसके भ्रष्टाचार को ही नष्ट कर देगा। इसलिए भ्रष्टाचारी व्यक्ति परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाता? वो जानता कि हमारा तो भ्रष्टाचार इतना हमने तैयार किया, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, परमात्मा की शरण गए तो वो तो साफ करके कर देगा, इसलिए उसके शरण में जाने को तैयार ही नहीं। ये प्रवृत्तियां भीतर कार्य करती रहती हैं। किसी की प्रवृत्ति जो है अधर्म की प्रवृत्ति है, दुराचार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है, तो वो अपने तरह से कार्य करती है, वो भी अपनी प्रकृति है व्यक्ति की। और एक धर्म की भी प्रकृति है, जो धर्म के पक्ष में है उनका जीवन दूसरे प्रकार का है, जीवन विधान दूसरे प्रकार का है, मान्यताएं भिन्न प्रकार की हैं। ये पृष्ठभूमि में ध्यान में रखें। अभी गीता के संबंध में थोड़ी बातें हैं और भी बतानी है, उसको कल देखेंगे, आज इतने ही रखते हैं। थोड़ा सा इसके साथ गीता के साथ थोड़ा भगवान का नाम भी लेते हैं, कीर्तन भी थोड़ा सा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीनाथ
नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।